यमुना तीर बन जारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोर नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बन जारी यमुना तीर बन जारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी सोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बन जारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे
परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोतर शतिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर Shivasadi Gaur Bhakta Vrindaki Jai Jai Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Navadip Dham Ki Jagannath Puri Ki Gangamai Jamunamai Ki Bhakti Devi Tulsi Devi Ki Kali Gopavan Harinam Sankirtan Ki Gaur Premanande All glories to the Assembled Devotees. All glories to the Assembled Devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manohishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Mandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschakte Deshatarine Vancha Kalvataru Vishchakripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna हम लोग सुबह जो नामाव्रत के बारे में पढ़ते हैं उसमें एक अपराध है शास्त्रों की निंदा करना वैदिक शास्त्र और प्रमाणों का खंडन या निंदा करना तो जब शास्त्रों की निंदा होती है या लोग खंडन करते हैं क्यों खंडन करते हैं क्योंकि उनको जब ऐसे कुछ शास्त्र पढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि अरे शास्त्र बहुत मतभेद करते हैं भगवान के बारे में भगवान के प्रति विश्वास रखना इस भौतिक सृष्टि को देखकर ये पहले आसान था क्योंकि हर जगह में लोग महानता को देखते थे समुद्र बहुत बड़ा है पर्वत बहुत बड़े नदियां इसे विशाल मात्रा में यानी कि जहां भी लोग अपना नजर डालते तब सृष्टि दिखाई देती तो स्वाभाविक था कि जो मनुष्य जो बनाए नहीं उसके प्रति नजर डालने से स्वाभाविक लगता है कि कोई तो है लेकिन आधुनिक समाज में जो सृष्टि ने जो बनाई है वो दिखाई नहीं देता यहां देखो कितने सारे बिल्डिंग बन रहे हैं इसलिए थोड़े दिन में आकाश नहीं दिखाई देगा जब आकाश दिखाई नहीं देगा नक्षत्र नहीं दिखाएंगे केवल जो मनुष्य ने बनाया हुआ है उसको देखेंगे तो स्वाभाविक है कि लोग प्रश्न करेंगे, अरे भगवान का कहां अस्तित्व है। शहर के लोग ये प्रश्न ज्यादा करते हैं, गांव के लोग नहीं करते, क्योंकि उनका वातावरण ऐसा उनके लिए अनुकूल है आसानी से मानने के लिए। ऐसे उदाहरण के लिए लोग कहते हैं, अरे ये तो गलत है, ये तो दंत कथा, ये तो काल्पनिक है कि भगवान पीले कलर के होते हैं, भगवान नीले कलर के होते हैं। ऐसा कुछ देखा है? क्यों नहीं देखा? अगर आप हमारे वृंदावन गार्डन में, राधा गोपीनाथ मंदिर में एक छोटा सा तालाब है, उसमें मछलियां है, अगर मछलियां सुंदर कलर के हो सकते तो भगवान क्यों नहीं हो सकते? जब कोई वैविध्यता को नहीं देखता, तोता है कैसा कलर बना के रखा है देखो, अगर एक तोता हरा कलर का हो सकता है, मछली पीला कलर की हो सकती है, तो भगवान गौरांग क्यों नहीं होंगे? परंतु साधारण लॉजिक ये समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम जहां रहते हैं वैसा वातावरण बन जाता है, जहां सुनते जिसे सुनते हैं वैसे हमारी मनोधारणा हो जाती है। तो इसलिए कल दो दिन से हम जो चर्चा कर रहे थे कर्ण के बारे में, कैसे अलग अलग धारणाएं हैं, कितने सारे ग्रंथ लोगों ने लिखा है, तो इससे जो सात्विक लोग भी कभी न कभी उनके मन से ये भेद आ जाता है और वो शास्त्रों की निंदा कर बैठते हैं। आज हम प्रयास भी करेंगे एकलव्य के बारे में चर्चा करने के लिए, और एक लोगों का हीरो है, इतना नहीं है जितना कर्ण, लेकिन वो भी है, एकलव्य ट्यूटोरियल्स, सेल्फ स्टडी एकलव्य ग्रुप्स। तो लोग ऐसा किसी न किसी से शास्त्र के, अच्छा है, किसी न किसी प्रकार से वो संबंध लगाते हैं, लेकिन गलत संबंध लगाने से फायदा ठीक नहीं होता। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कर्म कर्म, दोष खुद को देखना है, पूर्वजन्म के बारे में सोचना है। जैसे मैं कलकत्ता अधूरी रख दिया सुबह, वो जो दो भक्तगण, एक भक्त पुस्तक वितरण कर रहे थे लंदन में, तो किसी ने उनसे पूछा, दो क्रिश्चियन लड़कियां ने पूछा कि अरे तुम्हारे धर्म क्या है, कर्म क्या है, आपने जो पिछले जन्म में किया था या उसके पहले, या उसके पहले अपने पापों को, अपने जो पिछले जन्म में किया था उसकी कोई जानकारी नहीं, अभी आपको दंड मिल रहा है, एक ऐसा न्याय है। तो उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया, बहुत चाणाक्षता से उन्होंने कहा, तो आप बताओ आपका क्या राय, ऐसा क्यों होता है? यूजुअली क्या होता है, हम लोग डिफेंड करते हैं, चैलेंज करते हैं। तो उन्होंने पूछा आपका क्या राय, बोले एक भगवान की कृपा है। बोला वाह, यानी कि भगवान तुम्हारे इतने क्रूरी है, अगर कर्म गति को भगवान से अलग करके प्रकृति के दृष्टिकोण से देखोगे और भगवान उसको दूर करने के लिए आते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। या आपने कह दिया नहीं, हमारे लोग ये इसलिए दुख भोग रहे क्योंकि भगवान की इच्छा है, ना दैट मीन्स योर गॉड इज क्रूर, क्योंकि भगवान चाहते कि मैं दुखी हो जाओ, नहीं चाहते। किसी भी शास्त्र में ये वैदिक दृष्टिकोण से विरुद्ध है कि भगवान ने सृष्टि बनाई है ताकि जीव दुखी बने, आपको कहां भी दिखाई नहीं देगा। बल्कि भगवान यहां आते हैं, शास्त्र बनाते हैं, मूर्ति पूजा हमें बताते हैं, गंगा बनाते हैं, शालिग्राम शिला है, संतों को भेजते हैं, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं। क्यों? ताकि जो हमने हमारे खुद के इच्छा से जो पाप किया है, जो कष्ट भोग रहे हैं, उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं कि हमें दंड देने के लिए। सरकार जब कारागृह बनाती है, उद्देश्य ये नहीं है, दंड देने का उद्देश्य नहीं, ये नहीं कि दंड देना, दंड देने का उद्देश्य है कि आपको सुधारना। केवल मारना, कभी कभी जो पुलिस डिपार्टमेंट में उनमें रुचि आ जाता है, कल्टीवेशन करते हैं प्रेम भक्ति मारने में, मारते रहो, क्यों मार रहे हैं, नहीं मारना है बस, नहीं मारने का उद्देश्य है सुधारना है, मारना है यहां रुकना नहीं है, उससे आगे बढ़ो, कहां आगे बढ़ो, सुधारने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा अगर आपके धर्म में ऐसा लिखा है कि भगवान ऐसा करते हैं दैट मीन्स योर गॉड इज क्रूएल. द होल प्रोसेस इज टू रिफॉर्म, सारी प्रक्रिया है सुधारने के लिए. तब वो समझ गया हाँ हमने कुछ गलती कर ली, ये हमको ठीक से जानना चाहिए. इसलिए अगर कोई पाप करने में यानी पाप उसे छूटता ही नहीं है, समझने पर भी वो छोड़ने की तैयारी नहीं करता, तभी हमें समझना चाहिए कि उसके पूर्व जन्म के बहुत बहुत गहराई में उसकी बद्धता है, कंडीशनिंग है. जैसे हमने देखा कि कर्ण इतना जानने पर भी कि अज्ञान का जो कवरिंग होने के कारण वो बदल नहीं पाए. भगवान इतना प्रयास कर रहे थे, देखो कितना प्रयास कर रहे थे कृष्ण कि युद्ध रुकना चाहिए, शांति होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इतना सब प्रयास करने पर भी लोग क्या कहते, अरे कृष्ण ने ही किया, उसकी इच्छा ही नहीं थी. जैसे गांधारी इधर वो थोड़ी सी गिर गई, किधर गिर गई, इतनी धर्मशीलता थी लेकिन अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति के कारण जहां तीव्र गति में सुख है वहां ज्ञान का लोप हो जाता है, और जहां तीव्र गति में दुख है वहां भी ज्ञान का लोप हो जाता है. एक्सट्रीम डिग्री, एक्सेसिव अटैचमेंट, एक्सेसिव सफरिंग, एक्सेसिव प्लेजर. इसलिए सुख भोग हो या दुख है, ये जहां ज्यादा मात्रा में हो जाता है वहां नास्तिकता स्वाभाविक रूप से आ जाता है. प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि सफरिंग कॉजेस एग्नोटिज्म, एग्नोस्टिक बन जाते हैं लोग, नास्तिक बन जाते हैं. यानी कि इतनी धर्मशीलता होने पर भी जब दुर्योधन उसके पास आया उन्होंने कहा मुझे आशीर्वाद दो, वो कहते मैं आशीर्वाद नहीं दे सकती हूं, मैं यही आशीर्वाद दे सकती हूं कि जहां धर्म है वहां ही विजय होगा. मैं तेरे शरीर को पत्थर के समान बना सकती हूं लेकिन एक गारंटी नहीं कि आपको विजय होगा. वो पत्थर को कोई बॉम्ब भी लगा सकता है, अभी मैंने लगा भी दिया हा? तो मैं पत्थर जैसा बना सकती हूं लेकिन विजय बनाने का, विजय का आशीर्वाद देना मेरे हाथ में नहीं है. जानती थी धर्म के बारे में, धृतराष्ट्र को सबके सामने शांति दूत बन के जब कृष्ण आए थे सबके सामने पत्नी होने पर भी 5000 साल की पत्नी थी, आज की नहीं, 5000 साल की पत्नी है वो, सबके सामने डांटती है कि आपके कारण ये सब हो गया. यानी कि इतना उसके अंदर जानकारी थी धर्म के बारे में, लेकिन फिर भी पुत्र व्यामोह के कारण क्या हो गया कि जब वो सुन रही थी क्रिकेट कमेंट्री चालू था संजय का, अब 4 गए, आज 8 गए, आज 12 गया, 24 हो गया, 36 हो गया, इस प्रकार से मारा गया. और जब दुशासन और दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है भीम के द्वारा, ऐसा भयंकर, ऐसा कोई फिल्म नहीं बना सकता, जो टेरर मूवी हो, जो डराने वाला मूवी हो, ऐसा कोई नहीं बना सकता. भीम जब दुशासन के छाती को फाड़ देता है, ये भी एक कॉन्ट्रोवर्सी है, तो जब फाड़ता है और अपना मुंह लगाता है उस पर और खून खींच लेता है, और वहां के जितने भी योद्धा थे कर्ण लेकर सबके सब भाग गए, बोले मनुष्य ने ये नरभक्षक है. और भीम खड़े होकर जोर से बोलते आज तक मैंने क्या क्या जूस नहीं पिया, मैंने मां का दूध पिया, अलग अलग प्रकार के जूस पिए, अलग अलग प्रकार के दाल पिए, लेकिन जो ये जो गर्म खून है ऐसा रुचि मैंने कभी अनुभव नहीं किया है. ये भीभत्स है कि नहीं, ये बहुत भीभत्स है. तो ये जो कहानी संजय बता रहे थे युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को, दुर्भाग्यवश ऐसा होता है, कुछ भी हो जाए मेरा ही पुत्र है ना, यह आसक्ति है कि जानने पर भी ये उधर ही रुक जाता है, क्या कुछ भी हो जाए वो मेरा ही पुत्र है. बहुत कठिन है न्यूट्रल बनना, बहुत कठिन है न्याय के दृष्टि से देखना. जब ऐसी उनकी मृत्यु हो गई और दुर्योधन की मृत्यु, उसको उसके जीवन शरीर को जानवर खींच रहे थे जीवन शरीर को, मरा भी नहीं था वो, उसकी रक्षा करने के लिए कोई लोग नहीं थे, बचे ही नहीं थे कोई, सब लोग मर गए थे, अकेला बचा हुआ था कृपाचार्य और अश्वत्थामा और कृतवर्मा वहां से चले गए। तो जीवन शरीर को कव्वे आकर खा रहे थे, गिदड़ आके खा रहे थे और अलग अलग जानवर आके उसको खींच रहे थे। तो स्वाभाविक है कि गांधारी के मन में न्यायुक्त बात बोलने पर भी क्या हो गया, उसको क्रोध आएगा। जब कृष्ण पांडवों को लेकर आते हैं तब गांधारी अपने दृष्टि से युधिष्ठिर महाराज के चरणों को देखती है विद द कॉर्नर ऑफ आइज, और वो देखने से युधिष्ठिर महाराज के नाखून जल के काले हो गए। देखो इतना उसके अंदर जो पतिव्रता की शक्ति थी, अगर वो आंख खोलती तो युधिष्ठिर महाराज भस्म हो जा सकते थे। और युधिष्ठिर महाराज के बाद वो पूछती है भीम से, भीम कितना भी पाप क्यों न किया हो, एक कौन सा शास्त्र है, कौन सा धर्म है, तूने उसका खून पिया? तो भीम पहली बार बहुत नम्र होकर बोलते हैं, यहां उनकी दादागिरी नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि स्त्री पवित्रता पतिव्रता और वो शक्ति महान है। बोलते मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने केवल नाटक किया। क्या नाटक किया? मैंने मेरे ओठ से उसको चूसा लेकिन दांत के इस पार जाने नहीं दिया। वहां क्या बना दिया मैंने? बांध बना दिया, डैम बना दिया। उसका खून मेरे जीवा पे कभी नहीं गया, ओठ के आगे वहां कहीं नहीं गया, मैं लोगों को डराना चाहता था। तो गांधारी जान देते ठीक है, फिर उसको शाप नहीं देती है। और परंतु सारा गुस्सा कहां चला जाता है? कृष्ण की ओर। यहां भी वो वेदांत बोलते, देख तू भगवान है ना, मैं जानती हूं तू भगवान है, तो क्या हुआ फिर मैं भगवान हूं? तो इसका अर्थ तू भगवान है, आप भगवान हो तो आप इसको रोक सकते थे, आपके अंदर रोकने की शक्ति थी, परंतु आपने रोका नहीं। देखो पहले वहां से चालू हो गया इल्जाम, दोष लगाना। वो खुद सुन रही थी कृष्ण क्या बोल रहे, कितना प्रयास कर रहे हैं युद्ध को रोकने के लिए, शांति बनाने के लिए, कब से प्रयास कर रहे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यहां वो गांधारी दोष लगाती, भगवान कहते कि देखो गांधारी आप जो वेदांत कह रही हो स्वतंत्रता के बारे में जानती हो नहीं क्या, उसको कितना समझा, कितना हमने प्रयास किया, नहीं नहीं आप उसके मन को बदल सकते थे। यानी कि सारा दोष वो कृष्ण को लगाती है, अरे जो आपका जो वेदांत है गलत है, मैं किसी का स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता, अपने इच्छा से सबको करनी होती है। आप कहती हो कि गलती मेरी है, जब उसका जन्म हुआ था किसने क्या कहा था? जब उसका जन्म हो गया तब विदुर ने क्या कहा था? विदुर मेरा ही प्रतिनिधि है, आपने देखा जैसे दुर्योधन का जन्म हो गया वंदीगण सूतिगण ये लोग गा नहीं रहे थे, सारे जो जो अमंगलकारी जो पक्षी है गीदड़ ऐसे ऐसे भ्रमण कर रहे थे, और जैसे दुर्योधन चिल्लाने लगा गधों के समान तो वहां राजघर के बाहर गधे आ गए और ऐसे जंतु आ गए, बोले हम इधर है, कांग्रेचुलेशन फॉर अपियरिंग इन दिस वर्ल्ड, उसका अभिनंदन करने के लिए वो बाहर खड़े थे। तब विदुर ने कहा था धृतराष्ट्र गांधारी इसको क्या करो, त्याग दो, इसको छोड़ दो। बोले क्या बात कर रहे है, छोड़ दो मेरा पुत्र है वो, नहीं तेरा पुत्र ने ये नाश करने के लिए आया हुआ है। विदुर ने कहा इसको त्यागने से क्या होगा, आपके बाकी बच्चे बच जाएंगे और बाकी राजा लोग बच जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको रखोगे तब क्या होगा, सारा नाश हो जाएगा। बोले याद नहीं आपको? फिर भी देखो वही एरे माजा मांग लिया, फिर से वही टेप बजाने का, नहीं नहीं फिर भी आप इसको बदल सकते थे। और ऐसे बोलते बोलते गांधारी का जो 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 दुख था जिससे उसका ज्ञान पूरा आवृत हो गया, उसके द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, अपने मुख से शाप दिया। क्या भगवान को शाप लगता है?
शाप नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य रूप में आए हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, वो शाप को लेते हैं, उसको स्पर्श कर लेते हैं, ठीक है आने दो मेरे पास। तो गांधारी शाप देती है, तो शाप देती है क्या कि जैसे आपने आपके कारण मेरे सारे पुत्र मारे गए, मेरे दृष्टि के सामने मुझे सुनना पड़ा, वैसे ही आपका यादव परिवार आपके सामने ही सब मर जाना चाहिए। यानी कि उसकी जो तपस्या थी, उसकी जो पतिव्रता की जो शक्ति थी, उसको सारा सुवेज में डाल दिया, गंदे पानी में डाल दिया गांधारी ने, भगवान को शाप दे के। आपके तपस्या का फल, आपके भक्ति का फल और आपके अध्ययन करने का फल, ये सब कुछ अगर भगवान को शाप देना है तो देखो कितना दुर्भाग्य है, कितनी दुर्भाग्य है कि भगवान को शाप दे दिया। अगर आपको किसी ने, हमारे मंदिर में गौर गदाधर प्रभु स्वीट राइस बनाते हैं, हाल ही में उन्होंने नया स्वीट राइस बनाया था, ब्लू कलर का, पर्पल कलर का, किसी ने टेस्ट किया है? नहीं किया है। ये विशेष चावल मणिपुर से आता है, मणिपुर से। इस चावल का नाम है गोविंद भोग, और केवल स्वीट राइस बनाने के लिए बनाया जाता है। कोई बॉम्बे का कोई व्यक्ति, मतलब गांव का व्यक्ति, वहां 4 ग्रेन लेकर आया था वहां से, और 2-3 साल में उसको चावल उगाया और उन्होंने हमको दिया था मंदिर को। वो होता है काला कलर का, और उसको दूध में बनाने से वो पर्पल कलर बन जाता है। और ये स्वीट राइस में और जो आज आप लोग खाते हो उसमें बहुत बड़ा अंतर है, उसका जो जो टेस्ट है वो अलग ही है, और वो बनाने के लिए बहुत समय लगता है। चावल बहुत बहुत हार्ड होता है, कम से कम 20-25 बार उसको विसल करना पड़ता है सिटी में। उसका चावल नहीं बना सकते हो, खा नहीं सकते हो, केवल भीम का सकता है उसको। तो वो स्वीट राइस बनाने के लिए बहुत समय लगता है। अगर किसी ने आपको दी वो स्वीट राइस दिया, या आपने खुद ने बनाया उसको, गांधारे ने खुद स्वीट राइस बनाया था अपने पतिव्रता के कारण, और स्वीट राइस लिया उसको और भोग भी लगाया, और उसको अगर आपने, यहां जो सुवेज चल रहा है ना, सारा गंदगी बाहर आ रही है, बिल्डिंग तो बन रहे लेकिन सब सारा गंदगी बाहर आ रही है, उसमें जाकर अपने स्वीट राइस पूरा डाल दिया, तो ये क्या है? ये सबसे सबसे महान प्रमाद है, ये दुख की बात है। तो कृष्ण को शाप देना, वही जो तारा थी, वाली की पत्नी, रावण की पत्नी मंडोदरी, वो भी अपने पति से बहुत प्रेम रखते थे, लेकिन जब आए हो देखने के लिए, वाली की पत्नी आई और मंडोदरी रावण की पत्नी आ गई देखने के लिए किसने मारा है, लेकिन आते ही उनमें परिवर्तन आ गया। वो अपने पति को कोसती है, रावण को कोसती है, वाली की पत्नी तारा रावण को कोसती है, तो उसके बाद दोनों को, ये रामायण में हम देखते हैं, दोनों को भगवान अपना चतुर्भुज का दर्शन कराते हैं। यानी कि न्यायुक्त पत्नियां थी, वो पूरे पतिव्रता थी, लेकिन पतिव्रता होने पर भी जानती थी कि मेरे पति पूरे पागल है और कामुक है, और उनकी सबसे बड़ी गलती है। परंतु गांधारी जानने पर भी पुत्र व्यामोह के कारण उसका मन शिथिल हो गया, और भगवान को शाप देती है कि सारे यादव मर जाना चाहिए आपके सामने। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कृष्ण ने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहती हो हम उसको स्वीकार करेंगे। भगवान प्रसन्न हो गए दो प्रकार, दो कारण के लिए। एक है, वो सोच रहे थे यादव को कौन मार सकता है, ये तो ऊपर से आए हुए देवतागण है, मेरे पार्षद है, इनको अगर मेरी लीला को विश्राम देना है इस भौतिक जगत में, कुछ ना कुछ कारण चाहिए यहां से जाने के लिए, तो अच्छा हो गया, गंधारे ने कुछ कारण दे दिया, स्वीकार है। और दूसरा, कृष्ण यही सोच रहे थे गांधारी कभी भी पांडवों को शाप दे सकती है, क्या पता, लेकिन अब शाप देने से क्या हो गया, उसका सारा पतिव्रता का जो तप है वो सब वहां ही नष्ट हो गया। अब कितना भी गाली दो पांडव को कुछ नहीं लगेगा, नथिंग विल हैपन, सो आई एम वेरी हैप्पी। वहां भी कृष्ण ने क्या किया, शाप को वर में परिवर्तित कर दिया। द बेस्ट पॉजिटिव थिंकर, जो सकारात्मक सोचने वाले में भगवान सबसे महान है, उन्होंने शाप को भी वरदान में परिवर्तित कर दिया। तो कहने का उद्देश्य है कि हिस्ट्री देखो, शाप देने के पहले, शास्त्रों का खंडन करने के पहले, कुछ करने के पहले हमको क्या देखना चाहिए, इतिहास देखना चाहिए, खुद का इतिहास। ये आत्मा का इतिहास क्या है, इस शरीर का इतिहास क्या है, क्यों इस प्रकार से ये शरीर क्लेश भोग रहा है, क्यों इस प्रकार से कर रहा है, इतिहास देखना खुद के। अगर किसी ने कि कोई स्कूल में गया है, अगर उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर टेंथ स्टैंडर्ड तक, उसको बनाकर रखेगा, देखता रहेगा, मैं फिफ्थ में इतना मिला था, सिक्स्थ में ऐसा मिला था। परंतु जिसके मार्कशीट में हर मार्क्स नीचे रेड मार्क्स है, मैथ्स 3, साइंस 4, सोशल स्टडीज 0, इंग्लिश -3, मराठी में भी आमची मराठी असून देखील 0 मार्क्स, तो क्या कोई खोलकर देखेगा उसको? उसको हमेशा सोचेगा नहीं, इसको देखना नहीं है, कोई देखना नहीं चाहता, अपने बुराइयों का याद नहीं करना चाहता। अरे भूल जाओ उसको, नहीं याद करना है। दैट शोज, ये दिखाता है कि जीव कितना अपने पाप कर्मों को याद नहीं रखना चाहता। उसको लगता है कि ये हुआ ही नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मेमोरी उसको हॉन्ट करता रहता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, चाहे मेरे से क्या आता है, मत्ता स्मृतिर ज्ञान, आपको मैं मेमोरी देता हूं। ये भगवान की दया है, इसको हमको समझना चाहिए। तो कुंती अपने मार्कशीट को नहीं देखना चाहती थी, हर सब्जेक्ट में उसको गांधारी नहीं देखना चाहते थे। क्यों नहीं देखना चाहते थे? क्योंकि वहां मार्क्स ही नहीं थे, केवल माइनस ही भरे हुए हैं, केवल उसके खुद के मार्क्स लेकर छोड़कर बाकी सब उसके पुत्र के, उसके पति के, उसके परिवार के, सारा 0 मार्क्स है। उसके जन्म से लेकर, कौरों के जन्म से लेकर कैसे आए थे, उसके द्वेष के कारण। उसने शादी कैसे किया, इसका भी इतिहास है महाभारत में। गांधारी क्यों धृतराष्ट्र के साथ विवाह करती है? कोई कहता है कि उसके पिता ने जबरदस्ती से उसको भेज दिया, नहीं, उसको जबरदस्ती से नहीं भेजा, क्योंकि वो सोच रही थी कि मेरा पति अंधा क्यों ना हो, वो कौन है, वो कुरु देश का राजा बन सकता है और मैं रानी बन सकती हूं। देखो कि मैं अंधा बन जाऊंगी, पतिव्रता रहूंगी, लेकिन टैग कैसा रहेगा, कौन सा टाइटल रहेगा, महारानी, राजमाता, इस कारण के लिए वो गांधारी ने धृतराष्ट्र के साथ विवाह किया था। ये महाभारत में है। जैसे कैकेयी दशरथ महाराज के साथ क्यों विवाह करती है, उनका अंतर बहुत बड़ा अंतर था। कई जो शास्त्रज्ञ कहते हैं अंतर ऐसा था कि कैकेयी 20 साल की थी और दशरथ महाराज 60 साल के थे, सोचो। तो प्रश्न उठता है, इतनी अच्छी लड़की थी क्या कैकेयी? नहीं, उसको भी वही रोक था कि मैं राजा की रानी बनूंगी। तो यहां जो दोष आ जाता है उसको चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, वो मार्कशीट को खोलकर देखना ये जीव चाहता नहीं है। ये भगवान की दया है। अगर बार बार किसी ने प्रश्न पूछा व्हाई कांट वी रिमेम्बर व्हाट वी डिड इन आवर लास्ट लाइफ टाइम, क्यों नहीं हम जानते मैंने क्या नहीं किया, नहीं, बहुत कठिन रहेगा। अगर खुद का मार्कशीट नहीं देखते हैं लोग, आप में से सोचो इसके बारे में, कितने बार जाकर जिस विषय में आप फेल हो गए उसको देखते हो, नहीं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिला है आपके पास कोई, हम कभी भी घर पे जो रिवॉर्ड है, किसी के पास कप मिला है, ट्रॉफी मिला है, उसको ही कपाट में डालते हैं, डालते कि नहीं? लेकिन जहां फेल्यूर है उसको नहीं डालते है। फेल्यूर क्या करेगा, वो हमारे इतिहास को बाहर निकालेगा। ये बहुत कड़वा दवाई है, इसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं करते। बरी द इतिहास को क्या कर दो, भूल जाओ। इसलिए चाणक्य पंडित के राज्य में, चंद्रगुप्त के राज्य में जो देशद्रोही होते थे ना, उनको याद दिलाने के लिए यहां एक कलर का बैंड लगा देते थे, जैसा वो मुद्रा करते ना, वैसे यहां मुद्रा आ जाता था देशद्रोही है, तो जिंदगी भर उसको लेकर घूमना पड़ता था। दो कारण के लिए, उसको पश्चाताप होना चाहिए और दूसरे लोग जानना चाहिए इसके साथ संभाल के रहो। चाणक्य बहुत प्रैक्टिकल थे, क्षमा करते थे, क्षमा कर दिया लेकिन भूलते नहीं थे। डोंट फॉरगेट, फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। अगर क्षमा करके भूल जाओगे वो वही गलती करेगा। इसलिए कर्म की गति ऐसी है, कर्म यानी कि हमको याद दिलाती है। एक कृष्ण की दया है, एक कृष्ण का दोष नहीं है, उसकी प्रकृति का दोष नहीं है कि याद नहीं दिलाना ये हमारे लिए ये ठीक है। अगर याद दिलाना हो इसको सहन नहीं कर पाएंगे, आत्महत्या करेंगे। मैंने क्या क्या पाप किया था मनुष्य योनि में और उसके कारण मुझे क्या क्या शरीर मिल गया। सोचो अगर हम सुअर के शरीर के बारे में याद रखेंगे, क्या प्रसाद खा सकोगे ठीक से? नहीं खा पाएंगे। हाथी का जन्म, शेर का जन्म, ये स्मृति विस्मृति देना ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की दया है। ज्ञान देते हैं कि अपने ऐसा आपका कर्म है और गांधारी इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए नास्तिकता है कि अपने मार्कशीट को नहीं खोलना, देखने के लिए तैयार नहीं होना और सारा दोष कृष्ण के ऊपर ही लगाना। इसलिए आज तक जितने लोगों ने भी कर्ण के बारे में लिखा है, जो जो काव्य के दृष्टिकोण से लिखते हैं, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है उसका पूर्व जन्म क्या था। लेकिन आचार्यगण, व्यासदेव जी स्वयं भागवत में, महाभारत में लिखते हैं, और महाभारत में इतनी निंदा नहीं करना चाहते, चलो छोड़ दो इसको, बहुत हो गया, तो पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है उसके बारे में। और भी जानकारी चाहिए तो बद्रीनाथ के स्थल पुराण में भी है, क्योंकि शास्त्र इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि भागवत कुछ बोल रहा है, भागवत कृष्ण की महानता को बोलता है और महाभारत किसी घोष्ट की महिमा को बोल रहा है। सब इंटरकनेक्टेड है। जहां भी देखो, माध्वाचार्य कहते हैं कि वेद पुराण इतिहास जो कोई भी ग्रंथ लो, आदो मद्दौ च अंते च सर्वत्र हरि गीयते। वेदों में भी हरि का ही गान है, पुराणों में भी हरि का ही गान है, उपनिषद में हरि का गान है, भागवत में हरि का गान तो साफ साफ है, प्रत्यक्ष रूप में, वहां कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। देखने की कला होनी चाहिए, वृत्ति होनी चाहिए, तो आप देख सकते हो। तो यहां उसके दो कथाएं आती है उसके पूर्वजन की, हो सकता है कि अलग अलग कल्प में हुआ था। जैसे हमने कहा कि जो साधु भेद, सात प्रकार के भेद की चर्चा की थी पहले दिन, तो जो सातवां भेद है साधु भेद, एक ही पात्र के बारे में दो ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से लिखा होता है। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ है कि एक ग्रंथ एक दूसरे किसी कल्प के बारे में बताता होगा और दूसरा ग्रंथ दूसरे किसी कल्प के बारे में बताता होगा, तो इसमें कोई संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। तो एक कहानी ऐसी है कि ये बद्रीनाथ की महिमा का वर्णन करता है, नर नारायण ऋषि क्यों प्रकट हो गए, कि वहां दुर्दन नामक राक्षस थे और राक्षस लोग तपस्या करते हैं, राक्षस लोग तपस्या करते ताकि बहुत भोग प्राप्त करने के लिए। हमारे जयदेव महाराज ने सुना है, किसने उनसे प्रश्न पूछा, महाराज इज क्वाइट अमेजिंग यू नो, इवन द डीमंस परफॉर्म तपस्या, इज वेरी इजी सेड। जैसे बच्चा अपने मां से कुछ चाहता है ना, साइकिल चाहता है, वो तपस्या करता है, खाना नहीं खाऊंगा, अपने आप को बंद कर देता है बाथरूम में और खाएगा नहीं, हो ब्रेकफास्ट भूल जाएगा, देखो कितना तपस्या कर रहा है, बच्चे को ब्रेकफास्ट भूल जाना, लंच में भी वो खाने की इच्छा नहीं रखेगा, जब मां बड़े प्रयास से उसको कहती है ठीक है साइकिल मिल जाएगा तब वो खाएगा, बोला ये दिस इज द टाइप ऑफ ऑस्टेरिटीज डीमंस परफॉर्म। उनकी तपस्या क्या है कि मुझे साइकिल चाहिए, कैसा साइकिल, मुझे अमर बनाए, मुझे अरे वही सिद्धांत है, वही गुण है, इसलिए वो तपस्या करते हैं। तपस्या करने का उद्देश्य है कि और ज्यादा भोग चाहिए, आज नहीं खाऊंगा मैं। जैसे नीति में कहा गया है कि शेर अगर एकादशी करेगा, आज एकादशी है, शेर एकादशी करेगा तो अगले दिन ज्यादा जानवरों को अपना जान गंवाना पड़ता है, बेटर यू ईट, तू आज खा ले क्योंकि तेरा नियम ठीक रहेगा। लेकिन तू उपवास करेगा तब क्या होगा, कल तू इतको तेरे को इतना भूख लगेगा तो ज्यादा जानवरों को मार देगा। यानी कि शेर का उपवास है कि बाकी लोगों के लिए प्राण संकट, इसलिए उनको उपवास नहीं करना चाहिए। तो यहां ये तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा बताओ क्या चाहिए। जैसे सब राक्षस का एक ही मंत्र होता है, क्या, अमर बनाओ। उन्होंने कहा मुझे अमर बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा वही मंत्र, मैं खुद अमर नहीं हूं तो तेरे को कैसे मैं अमर कर सकता हूं। ठीक है, सोचने लगा अभी क्या मांगो। हर एक राक्षस वो सोचते है, बुद्धि का उपयोग करते, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो दुष्कृति, कृति यानी कि कार्य, कार्य करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, अच्छे कार्य बुरे कार्य करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो सोचने लगे क्या सोचूं, किस प्रकार से वर मांगू, जैसे कि मैं ब्रह्मा जी को धोखा दे सकता हूं। उन्होंने कहा ठीक है मुझे ऐसा वर दो, मुझे 1000 कवच चाहिए, 1000 कवच चाहिए, और मेरी मृत्यु जब 1000 कवच टूट जाएंगे तब मेरी मृत्यु होनी चाहिए। लेकिन एक कवच तोड़ने के लिए जो व्यक्ति 100 साल तपस्या करेगा, एक ही श्वास में बोल रहा है, मैं तो 4-5 श्वास ले रहा हूं, वो एक ही श्वास में ले रहा है, दुर्मद दुर्दम, कि 1000 कवच बनाओ, 1000 कवच तोड़ने से मेरी मृत्यु होनी चाहिए, और एक कवच तब टूटेगा 100 साल तपस्या करने के बाद, और जो भी तोड़ेगा उसकी मृत्यु होनी चाहिए। हो गया ना, अभी कौन जाकर उसके साथ युद्ध करेगा, क्योंकि जो भी एक कवच तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको भी 100 साल तपस्या करनी है। तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया, ब्रह्मा जी जानते हैं अपने नियमों को, भगवान बोला ततास्तु। वो खुश हो गया, ब्रह्मा जी को मैंने क्या बना दिया, पागल बना दिया, मैंने उसको फंसाया। जैसे हम लोग टैक्स को इवेड करते ना, वैसे ही तो वैसे ही वो आ गया। और पहले उसने क्या किया, सारे अपने अनुयायियों को कहा जो कोई भी तपस्या कर रहा है उसको मारो। यानी कि उसको लगा भाई जो कोई तपस्या कर रहा है वो मुझे मारने के लिए तपस्या कर रहा है, देखो क्या बुद्धि है। तो जहां कई लोग तपस्या कर रहे थे उनकी मृत्यु हो रही थी, उनको मार रहे थे उसको लोग। तो अंत में सब लोग गए ब्रह्मा जी को लेकर, कहां जाते हैं अंतिम शरणागति तो उधर ही है, तो गए भगवान नारायण के पास, उनसे प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो हम आ जाएंगे, बद्रीनाथ में हम आ जाएंगे। तो भगवान नारायण धर्म के दो पुत्र नर और नारायण बद्रीनाथ में प्रकट हो गए, और दुर्दम बद्रीनाथ के महिमा को नहीं जानता था। वहां एक दिन की जो तपस्या है वो 100 साल तपस्या के बराबर है। जैसे हम लोग एक बार वहां गए थे काफी साल पहले, वहां भीम निर्जल एकादशी था, तो हमारे जो कांग्रेगेशन का एक लड़का 10 साल का, उसने बोला ठीक है ये बार मैं कर लूंगा, ये बार करने से क्या होगा 100 साल करने का मुझे पुण्य मिल जाएगा। परंतु दुर्भाग्यवश रात को 10 बजे उसका उपवास टूट गया, भगवान ने उसको बचा लिया। उसको अभी वो हर साल करता है निर्जल एकादशी। देखो कृष्ण भी कैसे खेलते हैं लोगों के साथ। 10 बजे तक अच्छा से उपवास कर रहा था, लेकिन 10 बजे बाहर घूमने के लिए गया, फिर उसको बेहोश जैसा हो गया, फिर उसको पीना पड़ा कुछ। तो नर नारायण ऋषि ने कहा चिंता मत करो, और बैठ गए नर नारायण ऋषि तपस्या करने के लिए। दुर्दम को समाचार पहुंचा कि दो लोग तपस्या कर रहे हैं हमारे भूमि पर। अरे अच्छा, तो खुद आ गया हो, क्योंकि तपस्या करने वाले बहुत विरल हो गए थे, पहले बहुत लोग करते थे इसलिए सैनिकों को भेजा था, अभी बहुत विरल हो गया, खुद आ गया, देखा दो लोग तपस्या कर रहे हैं, आने में एक दिन देरी हो गई, तब तक फल मिल गया था 100 साल का, और नर नारायण ऋषि ने क्या किया था, उन्होंने एक प्लान बनाया था। नारायण उठे और दुर्दम के साथ युद्ध किए, उसका नाम अभी बदल गया था, उसका नाम हो गया था सहस्र कवच। तो उसके साथ युद्ध हुआ और पहला कवच नारायण भगवान ने तोड़ दिया और ब्रह्मा जी का वरदान उसको गौरव करने के लिए भगवान नारायण ने क्या किया, अपने प्राणों को छोड़ दिया। और नर ने अपने संजीवनी विद्या से जागृत कर दिया उनको और नर युद्ध करने लगे और नारायण बैठ गए तपस्या करने के लिए। तो दुर्दम के साथ एक दिन खेलना कोई बड़ी बात नहीं, उनको एक दिन खेलते रहे, उनका डुअल फाइट चलता रहा। और एक दिन जब तपस्या हो गई तो नर ने क्या कर दिया, दुर्दम को दूसरे कवच को मारा, तोड़ दिया। तो ऐसे करते 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 क्या हो गया, 999 कवच टूट गए। तो सहस्र कवच जान गया अभी मेरी जान चली जाएगी, भागाओ जोर से। भागा कहां, सूर्य के पास, और सूर्य ने उसको अपने पास रख लिया। बोला ठीक है, नर नारायण भी कहा छोड़ दो उसको, रखने अपने पास रखो और हम आएंगे वापस इस लीला को। ये जो मैच अभी आज रेस्ट डे है ना, तो अगले कल्प में आएंगे। तो जो राक्षस कवच और कुंडल के साथ ब्रह्मा जी ने दिया हुआ था उसका गलत उपयोग किया था। जैसे कुंती बालिका के रूप में जो जिज्ञासा के कारण उस मंत्र को, व्यभिचारी मंत्र को पुकारती है, जबरदस्ती मंत्र है, उसके द्वारा सूर्य जी आ गए और सूर्य ने आकर क्यों जबरदस्ती किया, वो जबरदस्ती इसलिए करना चाहते थे, इसको छोड़ना है मेरे को, ये लोड नहीं चाहिए, ये जो बर्डन पड़ा हुआ है मेरे लोक में ये नहीं चाहिए, इसलिए उस जो शिशु को कुंती के गर्भ में रख दिया। इसलिए भीष्म देव कहते हैं, हे कर्ण तुम धर्म लोप के कारण तेरा जन्म हुआ है, इसलिए तू गलत संग ही करेगा। समझ में आ गया कहानी, और इसके ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं चाहिए। तो उस कवच को लेकर लोग क्या दिव्य, दिव्य कवच नहीं हो कोई हा? आप जानते नहीं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, 26 सेकंड अवेन में प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने कहा जब आपके मंदिर के सामने जब गाड़ी आती है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि एक गाड़ी का जन्म इधर ही हो गया, उसके पहले आपने गाड़ी को नहीं देखा है और इसके बाद आप गाड़ी को नहीं देखोगे। वर्तमान में उसको देख रहे हो, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि उसके पहले उसका अस्तित्व नहीं था और इसके आगे अस्तित्व नहीं रहेगा। सिंपल कॉमन सेंस, री इंकारनेशन और कर्म, इसके लिए शास्त्र भी आवश्यकता नहीं है, एक कॉमन सेंस। बोले आप नहीं जानते होंगे, जैसे जानवर और बंदर लोग नहीं जानते हैं मंडे के बाद ट्यूजडे आएगा, कौन जानता है, मनुष्य जानता है। वैसे ही देवतागण जानते हैं कि कृत के बाद त्रेता आएगा, त्रेता के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद कलयुग आएगा, और मनुष्य योनि के बाद जिस प्रकार से आपका व्यवहार है वैसे अलग योनि मिलेगी। आपके दुकान के सामने मनुष्य योनि है अभी, इसके पहले क्या था आप नहीं जानते हो, इसके बाद क्या होगा इसको नहीं जानते हो, इसका अर्थ नहीं कि वो आगे पीछे है ही नहीं। जस्ट डू इट, ये बंदर की जाती है, जस्ट डू इट। लोग टी शर्ट डाल के जाते घूमते हैं, जैसे मैंने एक टी शर्ट देखा, मैं ट्रेन से आ रहा था तो एक लड़के ने पहन कर रखा था और ऐसा खड़ा था वो, और उस पर लिखा था सेव वाटर। मैं बोला वाह, कम से कम ऐसा टी शर्ट पहना हुआ है कि सेव वाटर लिखा हुआ है, लोगों को बोल रहा है कि अभी सब जगह में आप देखते हो एयरपोर्ट में कि पानी को बचाओ, पानी को बचाओ, पानी को बचाओ। तो हम उसकी प्रशंसा कर रहे थे मन में, लोकल ट्रेन में सेव वाटर, उसका जब ये हाथ निकला नीचे लिखा था ड्रिंक बियर। बोला अभी क्या है इसकी देखो कि सेव वाटर नीचे ड्रिंक बियर, देखो इसकी क्या बुद्धि है, भ्रष्ट बुद्धि है। तो इस प्रकार से अगर हम एक ही चीज को देखते आगे पीछे नहीं देखते हैं, जिसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए उसकी प्रशंसा करते हम सोचने लगते हैं देखो इतना अच्छा है, लेकिन नीचे बोला ठीक है तू पानी खराब कर दे लेकिन बियर मत पी। तो यहां उसको ही नहीं देखना चाहिए, आगे पीछे देखना चाहिए। तब वो आए और कर्ण कृष्ण और अर्जुन नर नारायण है ये बार बार कहते हैं, वहां इसका एक हिंट दिया गया है। हिंट दिया गया कि वो नर नारायण ऋषि बद्रीनाथ में तपस्या करने वाले करने के ही प्रसंग में इनका हिंट दिया जाता है नर नारायण के। और पद्म पुराण में कहानी आती है कि जब ब्रह्मा जी का जो सिर शिवजी ने, ब्रह्मा जी को पांच सिर थे, एक सिर शिवजी ने उड़ा दिया, लोग समझ रहे क्या है, इनमें भी समस्या चलती है। समस्या सब जगह में, जहां शुद्ध भक्ति नहीं हो, जहां पोजीशन है, जहां जीव, जहां तक जीव, किधर तक भी जा सकता है जीव। शिवजी कोई जीव नहीं है, लेकिन शिवजी ने, ब्रह्मा जी ने कुछ गलती की, उनका एक सिर निकाल दिया, तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आ गया और उनके क्रोध के कारण उनके शरीर में पसीना निकलने लगा। उसके पसीने से एक राक्षस बन गया। ये उनका पसीना का प्रभाव ऐसा होता है, हमको केवल खुजली हो जाती है, तो उनको तो राक्षस बन गया। उसका नाम था श्वेदज। श्वेदज यानी कि जो श्वेत के कारण जिसका जन्म हो गया। और ब्रह्मा जी ने कहा आप जाओ शिवजी के ऊपर आक्रमण करो, और ये श्वेदज भागा और शिवजी आ गए विष्णु के पास, और विष्णु को कहा देखो ब्रह्मा जी मैंने उनको दंड दिया, वो मेरे पीछे अभी इस राक्षस को छोड़ा है। तो भगवान विष्णु ने अपने रुधिर से एक एक योद्धा बनाया और उसका नाम था रक्तज। और रक्तज और श्वेदज में युद्ध चालू हो गया। रक्तज को, श्वेदज को 1000 कवच थे और श्वेदज को 1000 हाथ थे, और युद्ध चालू हुआ। उस युद्ध में काफी देर तक युद्ध चलता रहा। श्वेदज के 999 कवच टूट गए और रक्तज के 998 हाथ निकल गए। दोनों समान योद्धा थे। और उसके बाद युद्ध रोका, फिर वो सूर्य के पास चला गया। कौन? श्वेदज। और वहां चर्चा हो गई और वहां उन्होंने कहा ये दो है विष्णु और रक्तज, ये नरनारायण के रूप में बद्रीनाथ में तपस्या करेंगे और उसके बाद द्वापर में कृष्ण अर्जुन के रूप में आएंगे। ऐसे कहानियां हम देख सकते शास्त्रों में, कहां भी आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा अगर इधर कुछ लिखा है इधर है नहीं है। नहीं, हर एक कहानी के पीछे एक्सप्लेनेशन और एक दूसरे पुराण में हो सकेगा। जैसे हमने कहा था कि वो इंद्र का जो 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 श्वान है वो देवशुन, सुन शेप करके भागवत में आता है कि ऋषि पुत्र का नाम है कुत्ते का पूछ, कुत्ते का बाल। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्र कभी किसी का निंदा नहीं करेंगे। वेदों में लिखा है ये कौन है, ये क्या है, ये है, ये सुनशेपने के देवताओं का कुत्ता है जो वेदों को ठीक से जान सकता है, वेदों के सार को जान सकता है। फिर किसी भी ऋषि पुत्र अपने बच्चों का नाम वो रखना चाहते हैं कि चलो मेरे पुत्र का नाम मैं इस देव कुत्ते के पीछे रखूं ताकि उसको भी शास्त्र समझ में आएगा। यहां हम कर्ण जो एपिसोड है उसको रोकते हैं, और काफी है बोलने के लिए, लेकिन हमको कर्ण भावनामृत नहीं बनना है, हमको कृष्ण भावनामृत बनना है। तो आगे हम जाते हैं सबसे सबसे जो विवादास्पद, केवल महाभारत में नहीं, सारे शास्त्रों में, भारत में, भारत के समाज में, भारत के दैनंदिन जीवन में सबसे बड़ी समस्या जो जलाती है वो है वर्णाश्रम धर्म, वर्ण भेद। इस कारण जो भेद हो गया है समाज में, लोगों में जो इकट्ठा होनी चाहिए वो सब टूट गया, भाषा के कारण, वर्ण के कारण, और बाद में जो जाति के कारण, ये सब भेद है। और दूसरा कि आर्य और द्राविड़, इस भेद के कारण ये भेद कहां से आया, क्या शास्त्र में भेद है, एक ऊंचा एक नीचा इस प्रकार से शास्त्र लिखता है, तो इसको किसने किया, इसको करने का उद्देश्य क्या था। अगर आप देखोगे जिस समय भारत को स्वतंत्र हो गया अगस्त 15, हमें तैयारी करनी चाहिए, 15 अगस्त आ रहा है, तो जब भारत का स्वतंत्र हो रहा था तो किस प्रकार से स्टेट को बनाने का उन्होंने प्लान किया, थोड़ा इतिहास पढ़ने से समझ में आता है कि देखो कहां कैसे किस प्रकार से श्रूड प्लान्स था। पहले किसी भी राज्य में भाषा के ऊपर राज्य का विभाजित नहीं किया गया था। ये ब्रिटिश लोगों ने कहा कि ऐसा ही करो, क्यों, इससे क्या होगा, उन्होंने सजेशन दिया ऐसे करने से देखो सब मराठी लोग एक जगह में रहेंगे, कन्नड़ लोग एक जगह में रहेंगे, और ये लोग ऐसा रहेंगे उधर रहेंगे, तो हमारे राजकारणियों ने हमने इतिहास को पढ़ा ही नहीं, संस्कृति को नहीं पढ़ी, वो तो जाते थे ब्रिटेन में पढ़ने के लिए, तो वो क्या जानते इसके बारे में। तो इससे क्या हो गया कि जहां भाषा से राज्य को विभाजित किया गया तो ऐसे कहीं बॉर्डर टाउन तो होते ही है, तो उसमें संघर्ष चालू हो जाता है, और संघर्ष से कई पॉलिटिशियंस अपना पेट पूजा कर लेते हैं, नेता बन जाते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ोगे जितने भी राजा लोग थे अलग अलग देश में, वहां एक भाषा नहीं, स्वाभाविक रूप से कोई बॉर्डर में चार पांच भाषा ऐसे सीख लेता था। हम एक जज की पत्नी से मिले थे, हम लोग हम्पी जा रहे थे, वृद्ध थी, 70-75 साल की, वो थी महाराष्ट्रियन, लेकिन उसको अस्खलित कन्नड़, तेलुगु, तमिल, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश, हमारे ग्रुप में जितने भी अलग अलग भाषाओं के लोग थे उनके साथ उसी भाषा में बोल रही थी। मैंने कहा आप कहां से सीखा, ले माय फादर इज टू वर्क एज अ जज ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो जहां भी हम लोग जाते थे वहां की भाषा मैं सीख लेती थी। तो जब हमने इतिहास पढ़ा था मध्यकालीन इतिहास, तो वहां जैसे विजयनगर साम्राज्य में ऐसे तेलुगु भाषा भी थी, कन्नड़ा भाषा भी थी, लोग तमिल भी पढ़ते थे, संस्कृत तो पढ़ते थे ही, इस प्रकार से चार पांच भाषा जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो जैसे ऐसा भेद कर दिया, सब मराठी एक जगह में, सब कन्नड़ एक जगह में, तब से चालू हो गया माझी मराठी महान, मराठी माणूस, मराठी माणूस बंगाल मध्ये गेला ना करतो काय, तमिल माणूस जब हिंदी में आ जाता है उसको सब्जी भी खरीदने में नहीं आती है। तो इस प्रकार से भाषा भेद के कारण विषम फैल गया। चार भाषा सीखने से हमारी वृद्धि हो जाती है, संपत्ति बढ़ जाती है। तो देखो उनकी इच्छा थी कि भारतीय लोग हमेशा के लिए संघर्ष करना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए। मैं बॉर्डर टाउन से आया हूं, बेलगम, हाल ही में न्यूज़पेपर में आया था ना, इधर काफी लोग बेलगम के हैं, तो वहां मतलब वो भाग्यशाली एक दृष्टि से अगर जानते थे, ठीक है हम बॉर्डर के हैं, हम कितनी भाषाओं को सीख सकते हैं, लेकिन मराठी लोग कभी कन्नड़ नहीं सीखते थे, बराबर ना सुदर्शन प्रभु और जो फनाटिक कन्नड़ लोग थे वो मराठी नहीं सीखते थे। मराठी लोग बोलते थे शिवाजी महाराज की जय, और कन्नड़ लोग बोलते थे टिप्पू सुल्तान की जय। देखो यहां भाषा के कारण ये भी भूल गए, इतिहास को भूल गए, शिवाजी महाराज को जय बोलना और टिप्पू सुल्तान को जय बोलना यानी कि भारत को जय और पाकिस्तान को जय बोलने के समान है। उनको लगा वो मैसूर का राजा, यानी कि वो कन्नड़ है, यानी कि वो ये है, स्पेकुलेशन करना। और शिवाजी महाराज की मुर्दाबाद देखो, यानी कि जिन्होंने गो ब्राह्मण प्रतिपालक, उनका राजधर्म ही क्या था कि गो की रक्षा करना, सनातन धर्म को बढ़ाना, और उसमें जिसने लाखों मंदिरों को तोड़ दिया, इसमें कैसे समन्वय हो सकता है। लेकिन सौभाग्यवश हमारे साथ में काफी जो निष्णात बुद्धिमान लोग थे उन्होंने भेद समझाया, तो कन्नड़ होते हुए भी हमें बड़ा आनंद आता था शिवाजी महाराज की जय बोलने के लिए, क्यों जानते थे। तो ऐसे स्कूल में मराठी मित्र लोग भी थे इसलिए मराठी भी बोल सके। मैं सोचता था अरे अभी आने के बाद अगर और भी अच्छा ग्रामर भी मराठी सीख लेता तो मराठी में प्रवचन कर सकता मैं। थोड़ा डर लगता है रघुपति प्रभु के सामने बैठकर प्रवचन करने के लिए। ये एडिटर है ना रोहिणी कुमार प्रभु, रघुपति प्रभु तो सारा एडिटिंग करते रहते हैं। तो कहने का उद्देश्य है ये जो भेद आ गया कि सारे एक भाषा के लोग, अगर बंगाल में जाओगे आप और हिंदी में प्रश्न करोगे वो जवाब नहीं देते, वो चाहते कि मैं बंगाली सीख लूं एक दिन के अंदर। आप तमिलनाडु में जाओगे वहां कोई हिंदी में बोलेगा नहीं, उनको इतना गर्व। लेकिन जब इंजीनियर बन के बंबई में आते हैं तब उनकी हालत हो जाती है, तब उनको समझ में आता है हमारे राजकारणियों ने क्या कर दिया, हमको धोखा दे दिया, हमको फंसाया। परंतु अगर हां एक किसी बहुत सुशिक्षित मुसलमान थे, उन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू को, हिंदी राष्ट्रभाषा मत बनाओ, संस्कृत राष्ट्रभाषा बनाओ। संस्कृत राष्ट्रभाषा बनाने से क्या होगा, तमिल लोग भी सीखेंगे, मराठी लोग भी सीखेंगे, सब लोग संस्कृत को सीखेंगे। लेकिन किससे प्रभावित थे, ब्रिटिश लोगों ने खरीद लिया था। हिंदी बनाने से क्या होगा, फिर से झगड़ा होगा, संघर्ष होगा। और जहां संघर्ष है वहां राजकारणी अपना बना लेते हैं, जितना भेद होगा उतना वो अपना नाम कर लेते हैं, अपने आप को बढ़ाने लगते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हिंदी होगी राष्ट्रभाषा, संस्कृत नहीं होगा। तो उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने ये जो कल्चर हमें सुनाया कि सारे जो दक्षिण भारतीय लोग असली यहां के लोग थे, द्रविड़ लोग, वो सब काले थे, और ये आर्यन आए कहां से, बाहर से आए, यूरोपियन स्टॉक के, वो यहां वहां से आए। तो इसलिए आप कभी कभी देखते होंगे दीवार पर लिखा होता है कि भारताचे मूल निवासी, पुणे में काफी बार मैंने देखा है, ये मूल निवासी कौन है, भारतीय है, और ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब बाहर के है, इसका कोई पुरावा किधर भी नहीं है। ये ब्रिटिश लोगों ने क्या कर दिया, इंडोलॉजिस्ट ने भारतीय लोग में भेद डालने के लिए इसको ऐसा किया। इतिहास को हमको जानना चाहिए। यहां तक कि जब रामायण चल रहा था, राधा गोपीनाथ प्रभु बताते हैं, दक्षिण भारत में एक ने कोर्ट में केस डाला, उसने कहा एक गलत सीरियल चल रहा है क्योंकि यहां राम को हीरो दिखाई दे रहा है और रावण को खलनायक दिखाई दे रहा है, रावण द्रविड़ियन है और राम आर्यन है, इस सीरियल को बंद करो या ठीक से दिखाओ। वो मूर्ख ने नहीं पढ़ा था कि रावण रामायण में जब विभीषण को डांटता है वो क्या कहता है कि मूर्ख अनार्यन। रावण विभीषण को कहता तू आर्यन नहीं है, मैं देख कितना बड़ा आर्यन हूं। वो अपने आप को आर्यन कहता है कि मैं आर्य हूं, तू अनार्य है, तू राम के पास जा रहा है, तू हमारे समाज की सेवा नहीं कर रहा है। और रावण किस जात का था, कौन जात, कौन सा जात का था, पुलस्त गोत्र का था, ब्राह्मण था। तो इसलिए यहां रामायण जब वाल्मीकि लोग कहते, देखो वाल्मीकि कितना भेद है, वाल्मीकि को कोई शर्म नहीं है बताने के लिए रावण की कहानी जो राक्षस है और वो कौन है, वो ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण राक्षस है उसका भी बताया गया, शूद्र राक्षस है उसका भी बताया गया, राक्षस ही राक्षस है, शूद्र राक्षस और ब्राह्मण राक्षस में कोई अंतर नहीं है, दोनों भी राक्षस है। तो ये कहां से लेकर आए, तो ये भेद उन्होंने किया, द्रविड़ भेद, और इसलिए द्रविड़ मुन्नेत्र कलगम डीएमके, फिर एआईएडीएमके, अन्ना द्रविड़ मुन, ये क्या है, ये सब भेद में बड़ा हुआ है। कितना दुर्भाग्य, भाषा के द्वारा और द्रविड़ और इसके द्वारा। और तीसरा है, उन्होंने इसका भी भेद कर दिया, ये तो कम से कम किसी ने इकट्ठा कर दिया, सारे राजाओं को इकट्ठा करके नहीं चले गए, छोटे छोटे राज्य को छोड़कर वैसे चले गए। और छोटे छोटे राजा लोग क्या कर रहे थे, हमको एक नहीं बनना है, भारत में विलीन नहीं होना है, हमको इंडिपेंडेंट रहना है। जो हैदराबाद का नवाब, उसको पूछा गया वल्लभ भाई पटेल निजाम हैदराबाद का, तुमको क्या करना है, बोला मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे पाकिस्तान में रहना। देखो हैदराबाद ये दक्षिण भारत में, कहता मुझे पाकिस्तान में रहना है, यानी कि रहेगा इधर लेकिन इसको पाकिस्तान से कनेक्ट करो। ये कोई अर्थहीन है। लेकिन अंत में वो चला गया, प्रभुपाद जी लिखते हो जाते समय उसके पास 150 कुत्ते थे, 150 डॉग्स विद हिम, एंड वेरी केयरफुली टुक दोज डॉग्स टू उधर लेकर गया। तो कहने का उद्देश्य है कि जो आए थे बिगाड़ने के लिए और गए सोच कर ये हमेशा के लिए संघर्ष करते रहे, और साथ साथ उन्होंने क्या छोड़कर गया, इंग्लिश और क्रिकेट, इंग्लिश भाषा को और क्रिकेट को। सचिन इज आवर गॉड एंड क्रिकेट इज आवर रिलीजन, ऐसे लिखा हुआ था बॉम्बे में कितने जगह में, क्रिकेट हमारा धर्म है और सचिन हमारा भगवान है, करो उसको भगवान, करो क्रिकेट को अपना धर्म और देखो क्या हालत होगा। और वर्ण भेद कहां से आ गया, क्या शास्त्र में वर्ण भेद है? वर्ण भेद है, लेकिन किस कारण के लिए उसकी हम चर्चा करेंगे कि वर्ण भेद करने के पहले हम दिखाएंगे कि वर्ण भेद का जो करने के कारण इतना बढ़ गया। आप जहां भी बीबीसी में सीरियल देखोगे, अगर भारत के बारे में कुछ भी आएगा वो क्या लिखते हैं, द कंट्री वेयर पीपल आर डिवाइडेड, जात के कारण वो सब भेद है। तो हाल ही में किसी इंग्लिश आर्टिकल आया था किसी न्यूज़पेपर में, किसी ने दिया हमको पढ़ने के लिए, यूपी में कोई ऐसे समाज के लोग है उन्होंने क्या कर दिया, वो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते, भगवान विष्णु को नहीं मानते, उन्होंने क्या किया है कि हमारे उद्धारक इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज इज अवर डिलीवरर, तो उन्होंने एक इंग्लिश देवी का डीटी बनाया। देवी का डीटी बनाना ही पड़ेगा, अगर दुर्गा की पूजा नहीं करोगे तो किसकी करोगे, इंग्लिश देवता की पूजा करोगे। उनको लगता है कि इंग्लिश की पूजा करने से, इंग्लिश सीखने से हम लोग समान बन जाएंगे। जाओ ब्रिटेन में जाकर देखो, अमेरिका में देखो, क्या वहां वर्ण भेद नहीं था, स्लेवरी नहीं थी? अभी तक जब भारतीय लोग वहां जाते हैं, फिर आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आपको सेकेंड ग्रेड ट्रीटमेंट दिया जाता है ब्रिटिश लोग अभी भी। इसको तो पहले कितने साल तक था, अमेरिका में अब्राहम लिंकन के समय क्या हुआ था, जो भेद हो गया था, दो नॉर्थ और साउथ इस प्रकार से दो अलग अलग हो गए थे वर्ण भेद के कारण। जो काले लोग जिनको निग्रो बोलना नहीं चाहिए, निग्रो बोलने से उनको, ये निग्रो ये निंदनीय शब्द है, वो अपने आप को ब्लैक पीपल कहलाते हैं, अगर आप किसी से मिलेंगे तो उनको निग्रो मत बोलना, उनको बोलो ब्लैक पीपल, उनको बस में आने नहीं देते थे, कोई कॉलेज में नहीं आने देते थे। आपको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, क्योंकि जहां अहंकार है वहां लोग शोषण करते हैं। अगर ब्रिटिश इतिहास हो, अगर यूरोपियन इतिहास हो, अमेरिकन इतिहास हो, ये होता ही है। 11 करोड़ रेड इंडियंस को ये लोग ने मार दिया अमेरिका में, 11 करोड़, एक नहीं दो नहीं, क्योंकि ये तो थर्ड क्लास सिटीजन है, दे आर नॉट मेंट टू बी हियर, यहां रहने के लिए योग्य नहीं है। वहां के थे वो, अमेरिकन थे रेड इंडियंस, तो यूरोपियन लोग वहां जाकर उनकी हत्या कर दी। 11 करोड़ लोग जब ट्रेन से जाते थे वहां, ट्रेन से लोग गोली से लाखों लोगों को मार देते थे, लिखा हुआ है, उन्होंने इतिहास लिखा है, उनके जो प्रामाणिक लोगों ने इतिहास लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बना दिया कि जो उच्च वर्णीय लोग क्या करते हैं, हां हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, ब्राह्मण लोग ने किया है, क्षत्रिय लोग ने किया है, काफी मात्रा में किया है, लेकिन इसका परिणाम क्या हो गया, शास्त्र ही ऐसा है, ये गलत है। शास्त्र के जो विचारों को गलत प्रकार से उपयोग किया है उसको ठीक करो, उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अभी सेंसस जो चल रहा है किस दृष्टि पर चल रहा है, अगर जातिवाद को निकालना चाहते, जातिवाद को निकालने से क्या होगा, राजकारणी लोग मर जाएंगे, जितना लोगों को अज्ञान में रखेंगे, जितना लोगों को कम भाषा सिखाएंगे, अगर महाराष्ट्रन केवल मराठी सीखेगा तो उसके नाम पर क्या कर सकते हैं वो लोग, अपना काम बना सकते हैं, लेकिन वो चार भाषा सीखेगा चलता है, मैं कन्नड़ भी बोलता हूं, जैसे हाँ कृष्णचंद्र के राज्य में एक स्कॉलर आ गए थे, और कोई पहचान नहीं पाया कि इसकी मातृभाषा कौन सी है। क्यों? ओडिशा अस्खलित, हिंदी अस्खलित बोलता था, सब भाषाओं को बोलता था। तो वहां के पंडित ने सोचा, अरे इसका मातृभाषा क्या है उसको जानना चाहिए, और गोपाल भाने के मैं कर सकता हूं आसानी से। तो जब गोपाल भाने क्या किया, वो पंडित लोग बड़े तेजी से जाते हैं हाथ में किताब लेकर, तो भाग रहा था, उन्होंने उसके पैर के नीचे लकड़ी डाल दी, वो पंडित गिर गया। गिरते उसने गाली किसकी भाषा में दी? अपनी मातृभाषा में दे दी। तो उन्होंने कहा इसकी मातृभाषा ये है, जिस भाषा से उसने गाली दी उस भाषा उसकी मातृभाषा है, और उसने स्वीकार भी कर लिया। तो ये सब हमको जानना चाहिए, इसके लिए द्वेष करने के लिए नहीं। वैदिक संस्कृति हमें द्वेष नहीं सिखाता। इंग्लिश भाषा ये बराबर है, अभी सारे दुनिया में इसका उपयोग होता है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसको उपयोग करना ही है। अब बच्चों को पढ़ाना ही है, हम ये नहीं करें कि कल से इंग्लिश बंद संस्कृत पढ़ो तो आपके बच्चों को जॉब नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रह रहे उसको सीखना चाहिए, लेकिन उसको भगवान नहीं बनाना चाहिए। एक स्कॉलर कह रहे थे, मैं भी इंग्लिश पढ़ता हूं, मैं भी इंग्लिश जानता हूं, लेकिन उसको कहां रखता हूं संस्कृति के दृष्टि के कौन से, जूता कहां रखते, उधर ही। जूता का यूटिलिटी है, वैसे उस भाषा का यूटिलिटी है, लेकिन उसको इधर मत लेकर, ऑल्टर में मत लेकर, उसको उधर ही रखो। अगर आप अपने जूता का उपासना करने लगोगे तो ये बहुत बड़ा, केवल कृष्ण का ही जूता यहां जाएगा और किसी का नहीं, ये गलत है। तो उसको उपयोग करो, यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू यूज इट, लेकिन कल्चरली पॉइंट ऑफ व्यू आपके नाश के लिए तुला हुआ है, ये आपको मदद नहीं करेगा। और जितना उस भाषा में, अगर प्रभुपाद जी की किताब इंग्लिश में है ये हमारा भाग्य है, तो बाकी सब जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वैदिक संस्कृति के बारे में उसके प्रति घृणा। भारतीय लोग, मैंने कहा कि भारतीय लोग अपने संस्कृति के बारे में, जब हम लोग अमेरिका में जाते हैं और हम लोग हरिनाम करते हैं, और अमेरिकन लोग बड़े प्रेम से डांस करते हैं, जितना बार मुझे हरे कृष्ण अमेरिका में लोग बोलते हैं उतना बॉम्बे में कोई नहीं बोलता। और जब हम लोग काफी बार हरिनाम करने के लिए जाते हैं, आपको देखने का इंडियन लोगों को, वो अपना मुंडी नीचे डालता है, इधर भी आ गए लोग, ये क्यों आ गए? उनको लगता है कि हमारा अपमान है, कि हमारा देश का अपमान है कि ये लोग इधर आ गए। वो देखते भी नहीं, उनको डर लगता है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई विद दिस पीपल, इनके साथ हमको संबंध दिखाना पड़ेगा। ये ऐसा है, बहुत बार ऐसा होता है। जैसे सिंगापुर में हमारे गौर गोविंद प्रभु, वो कथा सुनाते, वो सिंगापुर में काम कर रहे थे, और वहां उनके कंपनी में ऐसा एक नियम था, अगर कोई, उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में अगर कोई देरी से आ गया तो उसको कुछ न कुछ करना है सबके सामने, ही हैज टू डू समथिंग देरी होने के कारण, कुछ गाना गाओ, कुछ डांस करो, कुछ नौटंकियां करो, कुछ मिमिक्री करो, या कुछ करो, दैट इज द पनिशमेंट। ताकि लोग इतने तंग हो जाते थे काम करके आईटी इंडस्ट्रीज में, तो इनको ही बकरी बना देते हो, बलि की बकरे, चलो एंटरटेनमेंट कराओ। तो एक बार एक देरी से चले गए, तो इनको कहा नाउ यू शुड डू समथिंग। वहां सिंगापुर में चाइनीज लोग है ना, मलई लोग है, फिर इंडियन लोग है, तो तभी वो भक्त बन चुके थे। उन्होंने क्या किया, वेल एवरीबडी क्लोज योर आईज, तो सब लोग आंखें बंद कर दिए। तो उन्होंने कहा नाउ क्लैप लाइक दिस, तो उन्होंने क्लैप कराया, सस्पेंस बढ़ा रहे थे उसको, 1 2 3 1 2 3, सब लोग पहला क्लैप ठीक हो गया सबका। जैसे उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र चालू कर दिया, सब इंडियन लोग मुंह बंद मुंडी नीचे। अब सब चाइनीज लोग और मले लोग उनको बोले वाह कुछ तो नया चीज है, वो सब ताली जोर जोर से बजा रहे, और उनको देखकर इनको लगा हमको भी बजाना चाहिए। बोले वो बोल रहे थे अगर मैं वीडियो शूटिंग करता आप देख सकते थे। फिर उसके बाद जब उनको मिले, बोले तुम लोग कैसे लोग हो, भारतीय लोग हो, और वाई यू शुड टेक प्राइड इन प्रेजेंटिंग योर कल्चर, अपने संस्कृति को बताने के लिए गलत अहंकार नहीं, लेकिन समझाओ लोगों को, इसको देखकर आप क्या करो, अपनी मुंडी को नीचे कर रहे हो जैसे कि मैं चोरी कर रहा हूं। अगर इधर मैं कोई इस फिल्म गाना गाता था, आपको लगता है भारत फेस्टिवल मतलब क्या होता है? द फेस्टिवल ऑफ इंडिया मतलब कोई रामायण महाभारत से नहीं होता। भारत फेस्टिवल मतलब क्या? थोड़ा डांस होता है, कथकली डांस, ये डांस, फिर थोड़ा यू नो कुंकण का खाना, केरला का खाना, वही मछली, ये वो, ये भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति नहीं। उन्होंने सबको डाटा पकड़कर, अपने सारे जितने भी कंपनी के लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उनको डाटा, वाई, यानी कि क्या हो गया है कि अपने ही संस्कृति के प्रति घृणा हो गई है। लगता है कि नहीं नहीं हमारे बारे में कहां कुछ नहीं बोलना, उसको एडजस्ट करो। दिस वॉज नॉट एक्चुअली, वी नेवर प्रैक्टिस्ड इट। तो इस प्रकार से बोलने से क्या होगा, उनको लगता है लोग हमें स्वीकार करेंगे। जिस समय अमेरिका में या यूरोप में पंडित जी गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रभुपाद जी बोलते इसके बारे में, उन्होंने कहा सो यूर पंडित, सो कैन यू एक्सप्लेन अबाउट भगवदगीता, है दैट आई डोंट नो, उसके बारे में नहीं जानता हूं। आई एम पंडित ओनली इन रिगार्ड्स टू सरनेम, नॉट इन रिगार्ड्स टू नॉलेज ऑफ इंडिया। He said, I can't speak about that. Don't ask me. उसके बारे में मुझे मत पूछो, मैं नहीं जानता हूं। पंडित मतलब जो सारे वेदों को जानता है, त्रिपाठी यानी कि तीन वेदों को पढ़ा हुआ है, और द्विवेदी मतलब दो वेदों को पढ़ा हुआ है। आजकल ये द्विवेदी त्रिपाठी, दिल्ली में स्टैटिस्टिक्स हुआ था, ऐसे कितने सारे ब्राह्मण लोग दिल्ली में वो प्राइवेट टॉयलेट साफ करने में लगे हुए हैं। ये सही बात है, स्टैटिस्टिक किसी न्यूज़पेपर ने निकाला कि जो प्राइवेट जो टॉयलेट्स होते हैं वहां साफ करने में, उसको मेंटेन करने में मतलब 2-3 हजार मिल जाएगा। नहीं, अगर वो वेट पढ़ाएंगे लोगों को, आज भी वो बड़े शान के साथ, शुद्धता के साथ जी सकते हैं, लेकिन उनके अंदर कौन करेगा इसको, इतना शुद्ध कौन बनेगा, बेटर मैं चला जाऊंगा टॉयलेट में काम करूंगा। ये आया था स्टैटिस्टिक्स आया था। इसलिए दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने ये सब करके चले गए और वो डिवीजन हो गया, भाषा का, द्रविड़ और आर्य संस्कृति का, और बाद में कलर का, वर्ण भेद का। लेकिन शास्त्र देखेंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार का काम है कि धर्म को ठीक से बताना लोगों को, और वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो प्रैक्टिस कराना, ये उनका कर्तव्य है। जैसे चाणक्य पंडित के राज्य में, चंद्रगुप्त के राज्य में बताया जाता है, अर्थशास्त्र में लिखा है, अगर कोई ऐसा ही भिक्षुक या सन्यासी बन जाता, सन्यास धारण कर लेते, उनको बुलाया जाता था चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त आने के पहले नवनंदों का राज्य था। नवनंदों के राज्य में जैन और बुद्धिस्ट साधुओं की संख्या बढ़ गई थी, सबके सब सन्यासी बन रहे थे, स्त्रियां भी सन्यासी, पुरुष भी सन्यासी। तो जैसे चंद्रगुप्त महाराज राजा बन गए, उन्होंने नियम बनाया, आप पढ़ सकते हो चंद्रगुप्त के इसमें, उनको बुलाते थे, क्यों राजा, क्यों साधु बन गया, सन्यासी क्यों बन गया? अगर उनके पास अधिकृत कारण नहीं है, सन्यासी केवल पेट पूजा करने के लिए है, अपने घर के जो उत्तरदायित्व छोड़कर आए हुए हैं, तो चाणक्य क्या करते थे, उनको पीटते थे, बोले चलो वापस जाओ और काम करो घर में, और केवल जो अधिकृत सन्यासी है उनको रखते थे। देखो इससे क्या होता था, समाज में लोग जानते थे, अरे ये बोनाफाइड है, ये अनबोनाफाइड है, सरकार इसमें हाथ नहीं डालेगी, क्यों? जितना अनबोनाफाइड साधु बढ़ेंगे उतना लोगों की रुचि धर्म से निकल जाएगी, और वही तो चाहते हो। जैसे कोई भी साधु बन गया, कपड़े पहन लिया, वो बीड़ी फूंक रहा है, और जो बुद्धिमान लोग है, सुशिक्षित रहे, ऐसा साधु के साथ जाकर क्या फायदा है? साधु के प्रति विश्वास रखना ये करना ही नहीं चाहिए। इसलिए हाल ही में कोई साधु का कुछ समस्या हो गई तो सब NDTV, OTV सब लोग, ये सब मिशनरी लोगों ने खरीद किया हुआ है, तो नेचुरली है वो क्या करेंगे, इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोलेंगे। तो एक नॉर्थ इंडिया के साधु ने कहा, ये बहुत गलत है कि आप केवल एक दृष्टिकोण दिखा रहे हो, बाकी दृष्टिकोण दिखाएगा, इफ यू आर एक्चुअल रिपोर्टर्स, आपको क्या करना चाहिए? दोनों दृष्टिकोण दिखाना चाहिए. एक ही दृष्टिकोण क्यों? ठीक है, उसने गलती की है, उसका आपने एक्सपोज किया हुआ है, हम उसका आपका अभिनंदन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए? जो अपना पूरा जीवन दिया हुआ है, जो इसका संदर्शन दे रहे थे, वो न्यूरोसर्जन थे, न्यूरोसर्जन सुपर स्पेशलिस्ट. उन्होंने कहा मैं सन्यासी बनाऊं, परंतु मुझे सन्यास लेने के लिए 12 साल तक मेरे गुरु ने रगड़ा है मुझे, और ऐसे 400 लोग तैयार है सन्यास लेने के लिए, लेकिन उनकी तैयारी नहीं, अभी तक उनको सन्यास नहीं दिया जा रहा है. Why can't you write about this? You will not write this because you are not interested in this. ये सब लिखने से क्या होगा? लोगों का उनके प्रति विश्वास बढ़ जाएगा. आपको ऐसा ही चीज लिखना है जो इसमें विश्वास नहीं दिलाता. ये दुर्भाग्य है, हाँ, क्योंकि साम्यवाद, कैपिटलिज्म, मटेरियलिज्म और मिशनरीज, वो क्या करेंगे? हमारे धर्म संस्कृति को, हमारे ज्ञान को दिखाना चाहेंगे. इट्स लो क्लास, इट्स इज यूजलेस. इसलिए प्रभुपाद जी ने जो क्रांति की, जो कई साधु ने भी नहीं कर पाया. क्यों? कई साधु लोग कॉम्प्रोमाइज करके दे रहे, डीटी वर्शिप नहीं देंगे, विग्रहों की पूजा अगर लोगों को समझाएंगे तो वो सोचेंगे क्या मूर्ति की पूजा कर रहे हैं. एज इट इज वो लेकर चले गए अमेरिका में, हरिनाम संकीर्तन, विग्रहों की पूजा, सारी धोती, तिलक, कंटीमाला, ड्रम्स, करताल, हरे कृष्ण महामंत्र, आओ कोई भी आने दो, हम उनको समझाएंगे. हा? ये जो निर्भीड़ और बिना डर के इसका प्रचार किया, समझाया, क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज इट? व्हाट इज वर्णाश्रम? प्रभुपाद अमेरिका में जाके वर्णाश्रम के बारे में बोल रहे थे. उन्होंने कहा जब तक आधा काम हो गया है, देखो भारत में ऐसा कहना कि आधा काम हो गया, और आधा काम क्या है? आधा काम है वर्णाश्रम सिद्धांतों को फिर से स्थापित करना. हाय किसी का दम ऐसा बोलना, वर्णाश्रम को निकालना चाहते हैं. तो प्रभुपाद जी कहते कि मेरा आधा मशीन, आधा मिशन अधूरा बाकी है. आधा मिशन क्या है? कि आधा मिशन वर्णाश्रम को स्थापित करना, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो साइंटिफिक डिवीजन है, ये कृत्रिम डिवीजन है, ये आध्यात्मिक या वैज्ञानिक डिवीजन क्या है, इसको समझाना और उसके अनुसार लोगों को प्रशिक्षण देना, और उससे क्यों, उससे क्या होगा, उसका फायदा क्या है, इसके बारे में दोपहर को हम चर्चा करेंगे. और साथ साथ एकलव्य की जो कहानी है, जिनको लोग कहते हैं शूद्र था, इसके लिए उसके साथ इतना अन्याय हो गया, उसका अंगूठा निकाल दिया गया, उसको शिक्षण नहीं दिया गया, और खुद प्रयास करने पर भी उसको क्या कर दिया द्रोणाचार्य ने, ब्राह्मण था, अर्जुन क्षत्रिय था, और इन दोनों ने मिलकर उसके प्रति बहुत बड़ा अन्याय किया. ये क्या असली में अन्याय हुआ? ये क्या कहानी है? इसको किस दृष्टि से देखना चाहिए? मेरे और आपके दृष्टि से नहीं, व्यासदेव के दृष्टि से, शास्त्रों के दृष्टि से, और निश्चित रूप से वहां हमें सुलझाव मिल जाएगा. हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय.
श्रीमान गोविंद प्रभु की जय.